पिछले हफ्ते में हमने मत्ती पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 17 पद तक विचार किया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की वंशावली के बारे में और ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में लोग जान सके। बहुत सारे संसार में दुनिया में आए हैं, लेकिन शायद इतनी लंबी पीढ़ी के बारे में किसी के बारे में नहीं मालूम। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अनुयायी हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं, रोज खड़े होते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का वर्णन है, ऐसे कई आपको कहीं नहीं मालूम चले। और कहां से है? वहां से आरंभ से है, आदम से है, आदम से वंशावली। लूका आदम से वर्णन करता है और मत्ती जो है अब्राहम से छूता है। तो ये सब अच्छी बात है, तुम जान सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन कैसा है। कई बार बाइबल और बाइबल की बातों का एक धर्म की बातें करके रहते हैं। नहीं, प्रभु बाइबल की बातें धर्म की बातें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, और प्रचार भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं होता। अगर केवल प्रचार इसलिए होता कि लोगों धर्म परिवर्तन हो जाए, तो आज कितने समय से बहुत कुछ हो रहा है। अगर इतिहास को देखेंगे, कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत कुछ होता नहीं। लेकिन बाइबल उन्हीं के जीवन में काम करती है जो बाइबल के वचन को सुन करके विश्वास करते हैं। उनका वो हृदय परिवर्तन करता है, जीवन परिवर्तन करता है, मन परिवर्तन करता है, और उनके जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रह करके एक परिवर्तित जीवन व्यतीत कर सकें। आज जो स्थल को हम देखना चाह रहे हैं, वो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से 18 पद से लेकर के 25 पद तक के बीच में है। यीशु मसीह का नाम एवं उसका मूल, यीशु मसीह का नाम। और तीन मुख्य बातों को हम इसमें देखते हैं। तीन मुख्य में हम पूरे इन पदों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है यूसुफ के स्वयं के विचार इस जन्म के बारे में, जो जन्म होने वाला है उस जन्म के बारे में, यूसुफ के स्वयं के विचार, वो हमें 18 और 19 पद मिलते हैं। दूसरा है जो स्वर्गदूत का संदेश, वो 20 से 23 पद में है। स्वर्गदूत किस प्रकार का संदेश देते हैं, उस 20 से 30 पद में है। और तब यूसुफ की का प्रत्युत्तर और उसका स्टेप, उसका कदम, यूसुफ का प्रत्युत्तर और उसका कदम 24 और 25 पद में। तो कुछ ही पद है और इन पदों को हम इस रीति से देखने का प्रयास करेंगे। ये सच है, एक ही बात चल रही है कि परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि गलती उसके चार अध्याय के उसके चार पद में, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। गलती उसका चार अध्याय उसका चार पद, जब समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? वो समय जो परमेश्वर की योजना का था। परमेश्वर की योजना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम जो बाइबल को जानने वाले हैं, हमें बाइबल की समय रेखा को जानना अनिवार्य है, बाइबल की टाइमलाइन को जानना अनिवार्य है। किस प्रकार से पहले सृष्टि है, सृष्टि के बाद पतन है, मनुष्य पाप में गिरता है, पतन के बाद फिर किस प्रकार से इसराइल की कहानी है, इसराइल की इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर इसराइलियों को आगे बढ़ाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मसीह यीशु मसीह का आना है, जिसको अभी हम ध्यान दे रहे हैं, मसीह यीशु का आना। फिर उसके बाद मसीह यीशु का क्रूसिफिकेशन है, क्रूस पर चढ़ना, मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जूटना। और तब हम उसके अंत में देखते हैं महिमा, ग्लोरिफिकेशन, जो हम प्रकाश वाक्य उसके आखिरी अध्याय में देखते हैं। तो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशता तक को हम पूरी बाइबल में इन 6 बिंदुओं को देख करके पूरी कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। पहली सृष्टि है, पतन है, इसराइल का इतिहास है, मसीह का आना है, प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया की स्थापना है, और ग्लोरी और महिमा है। और हम इस समय इस 5वें काल में, 5वें बिंदु में चल रहे हैं, जो कलीसिया इतिहास का है। अभी हम एक उस समय की प्रतीक्षा करें जो महिमत की परीक्षा है, ग्लोरिफिकेशन की है, जिसमें हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो जब हम इस बात को देखते हैं, तो परमेश्वर की योजना ये थी आरंभ से, और वो अपने समय के अनुसार सारे कार्यों को कर रहा है। वो समय के अनुसार उसने अलाव क्या होने दिया कि मनुष्य पाप में गिरे। समय के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी, समय के अनुसार उसने भविष्य उसने अपनी सारे भविष्यताओं को खड़ा किया, समय के अनुसार उन्होंने सब कुछ करा और समय के अनुसार उसने वाचा दी और वाचा के अनुसार व्यवस्था दी और व्यवस्था के द्वारा सारे आगे बढ़े और अब यह समय आया। तो इसीलिए गलतियों पौलुस ने कहता है परमेश्वर जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। और सच है समय के साथ साथ, और इसी को यौना इस तरह से लिखता है, यौना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और इस तरह से लिखता है 14 पद में, और वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और वचन देदारी हुआ, यौना उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। सो हम इस रीति से देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर सारी चीजों को कार्य के अनुसार आगे बढ़ा रहा है। अब ये सच है जब परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार ये कहा जाए कि परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है और अपनी योजना में होकर के वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है कुछ समय के लिए। परमेश्वर मनुष्य बना है, मनुष्य कुछ समय के लिए उसने देह धारण किया है और वो देह धारण प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 26 पद को देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें पूरा 26-27 पद में स्पष्ट है कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो पुत्र भी पिता के साथ उसका समावेश हो जाएगा वो पूरी रीति से। सो कुछ समय के लिए उस कार्य को पूरा करना चाहिए जो उद्धार का कार्य था, जो छुटकारे का कार्य था, जो मनुष्य के फिर से परमेश्वर के पास लौट आने का कार्य था, उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो हम यहां जब हम इस बात को देखते हैं तो 18-19 पद में किस प्रकार से परमेश्वर बात करना चाहता है लेकिन यूसुफ का के हृदय में क्या कुछ हो रहा है। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, अब मसीह का, मैं बाद में उन नामों के बारे में विचार करूंगा जो 4 नाम स्थल में है। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा से की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने का कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। अब यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। जब हम मंगनी की बात करते हैं उस समय में तो उस समय कि यहूदी संस्कृति में किस प्रकार से जो भी स्त्री और पुरुष विवाह करते थे वो अपने आप जाकर आई लव यू नहीं कहा करते थे, हमेशा माता पिता का उसमें भाग रहता था, माता पिता बीच का काम करते थे। और वो और तब उसके बाद जब ये किसी दो जवानों में बातचीत तय होती थी, जब पिता और माता सहमत होते थे दोनों से, तब उसके बाद जो लड़की होती थी जो होती थी और जब पुरुष होता था जब उनकी मंगनी होती थी तो दोनों साथ खड़े होते थे, दोनों साथ खड़े थे। और दोनों साथ खड़े होकर के पिता, लड़के का पिता जो है, लड़के का पिता उस लड़की के हाथ में कुछ मुद्रा रखता था, कुछ धन रखता था और ये धन इस बात का प्रतीक होता था कि आज से ये कन्या मेरे बेटे के लिए है। और इस प्रकार से ये विधि को पूरा किया जाता था। आज हमने उसको थोड़ा सा बदला है, रिंग पहनाते हैं, कुछ चीजों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वहीं से वो चीजें चली आ रही, वहीं से वो चीज चली आ रही जो मंगनी को देखते हैं। और उसके बाद मंगनी के बाद अब दो बातें होती थी, लगभग 1 वर्ष तक मंगनी के बाद उन दोनों को ठहरना पड़ता था। उसका दो कारण होते थे, दो कारण। एक तो ये देखा जाता था कि कन्या जिससे मंगनी हुई है, जिससे आगने वाले समय जो पुरुष शादी करेगा वो 1 साल तक उसका जीवन कितना अधिक पवित्र रहता है। ऐसा तो नहीं कि किसी से ऑलरेडी उसकी मित्रता है या कुछ और हो और किसी प्रकार से वो पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रही हो और अशुद्ध हो जाए, कुछ और हो। और वो समय होता था कि उनको सोचना, दूसरा पुरुष की जिम्मेदारी होती थी, पुरुष की। अब वो माता पिता के घर से निकल कर अलग अपने होने वाली जो मंगेतर है, उसका जो आने वाली शादी हुई उसके लिए एक स्थान का निर्माण करता था, चाहे उसके माता पिता मदद करें, चाहे उसको करें। आप ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा होता है? परमेश्वर का वचन अपने आप को पूरा करता है, उसको अलग करके वो तैयार कर देता, और जब वो स्थान तैयार हो जाता और एक साल के अंदर ये सब कुछ ठीक दिखाई देता था, तब उनका विवाह होता था, और विवाह हो करने के बाद तब ये पुरुष जो है वो उस कन्या को लेकर के अपने नए स्थान पे लेकर जाया करता था। जब प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि की थी, और सृष्टि की थी तो आदम की वाटिका में जब सृष्टि की तो परमेश्वर ने कहा था पुरुष स्त्री के लिए वे अपने माता पिता को छोड़ करके अलग होंगे और एक तन होंगे। समझ रहे? जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी हम उस बात को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है योनास के 14 अध्याय में, तुम परेशान मत होना, तुम निराश ना हो, कलीसिया के लिए विश्वासियों कहता है मैं जा रहा हूं, जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक स्थान तैयार कर, क्योंकि पौलुस कहता है कि कलीसिया जो है उसकी मंगेतर है, कलीसिया दुल्हन भी है, और उसने हमारी सगाई उस यीशु से कराई है, और अभी विवाह होना है जिसका विवाह का वर्णन हम प्रकाश वाक्य में देखते हैं। तो जब बाइबल को पढ़ते हैं और इन सारी स्थितियों को देखते हैं तो हम विस्तार से देखते हैं किस रीति से परमेश्वर का वचन कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो उसको पूरा करता है। तो वहां जो बातें कही है वो यहां पर भी हम उसको इस मंगनी में पूरा देख रहे हैं कि उसी की परिस्थिति के अनुसार यहां पर सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये होता था। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मैंने पृष्ठभूमि को आपके द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। जब इन सारी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं कि एक कन्या को कैसा रहना चाहिए, पुरुष को क्या करना है, अब ऐसे में वो कह रहा है जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागम से, मतलब उनके मिलने से पहले, उनका आपस में साथ रहने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। अब ये एकदम से जब ये यूसुफ को मालूम चला, यूसुफ वाला, अरे मरियम तो गर्भवती है, तो यूसुफ के लिए बहुत कठिन था कि ऐसी स्थिति में वो मरियम को स्वीकार करे, और मरियम के लिए भी बहुत कठिन था कि इस बात को जाने कि अब संसार के लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस समय व्यवस्था के अनुसार एक बात थी कि अगर कोई भी कुंवारी गर्भवती पाई जाती थी तो वो व्यक्ति जो उसका होने वाला पुरुष, अगर सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है, तो जो पुरुष जो उसका मंगेतर होता था जिससे उसकी विवाह होना है वो उसको लेकर आता था बाहर, या अगर उसकी मंगनी नहीं हुई है, अगर वैसी है, तब भी उस कन्या को इसको बाहर लाया जाता था और लोग पथराव करके मार डाला करते थे। व्यवस्था विवरण उसके 22 अध्याय में पूरा, मैं समय को बचाने के लिए रेफरेंसेस नहीं ज्यादा देता हूं। सो ये स्थिति। अब सोचिए कि व्यवस्था के अनुसार क्या हो रहा है, व्यवस्था के अनुसार मरियम दोषी है, क्योंकि लोग नहीं समझ। ऐसी स्थिति में यूसुफ के लिए बहुत सरल था, यूसुफ बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए, परेशान हो जाए, और वो अपनी भी इज्जत को ध्यान दे, अरे मेरी तो इससे मंगनी होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, तुमने कैसी कन्या से मंगनी करी है, इसका जीवन ऐसा है, लोग उंगली उठाएंगे, लोग तरह तरह बातें कहेंगे, और मुझे फिर ऐसा करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसीलिए यूसुफ के बारे में बाइबल में ज्यादा वर्णन नहीं, और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आने से के समय ही यूसुफ का देहांत हो चुका था। यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता की अधीनता में रहे, लूका उसके 3 अध्याय में उसका स्पष्ट वर्णन है, लूका 3 अध्याय में, और वो 30 साल तक अपने माता पिता की अधीनता में रहा। उसका पिता यूसुफ बड़ाई का काम करता, लेकिन जैसे ही प्रभु सेवा में आने के आसपास थे उनका देहांत हो गया था, इसलिए आगे यूसुफ के बारे में नहीं। लेकिन इसी बीच में कुछ और भी बातें थी जो मैं बताता, पर यूसुफ के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, केवल यही स्थानों का कुछ और। लेकिन उसका जीवन मेरे और आपके लिए बहुत ही सुंदरता के साथ बढ़ा हुआ। यूसुफ का चरित्र, यूसुफ के गुण, लोग इतना अधिक ध्यान नहीं देते उसके बारे में, इतना विचार नहीं करते, थोड़े से पद है, पर आप उसके जीवन की क्रियाओं को देखिए, उसके जीवन की सोच को देखिए, उसके जीवन के विचार को देखिए,
उसके जीवन के निर्णयों को देखे, तब मालूम चलेगा कि यूसुफ का जीवन मेरे और आपके लिए कितना अधिक एक प्रभावशाली जीवन है। यहां पर हमारे बीच में एक बेटा जिसका नाम यूसुफ है। अच्छा है, वो ध्यान से सुने, क्योंकि नाम हमें उस तरह से आगे बढ़ाते हैं, नाम उसके बाद। अब यहां पर क्या हुआ जब है, लेकिन ऐसी स्थिति में यूसुफ के विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परंतु यूसुफ मरियम से प्रेम करता था, मेरे पहली बात, यूसुफ मरियम से प्रेम करता था, उस पर विश्वास करता था, उसका सम्मान करता था। अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन इतने दिन के बीच में उसने ये जान लिया है कि मरियम कैसी मरियम है, ये जान लिया है मरियम का जीवन जो किस प्रकार का जीवन है। लेकिन तब उसके बाद आगे चल करके 19 पद में लिखा है, उसका पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण, ये उसका गुण है, यूसुफ धर्मी है, यूसुफ धर्मी है। अभी हम आगे जाएंगे, क्या करना, धर्मी होने का क्या, उसे बदनाम करने की इच्छा से, वो नहीं चाहता था कि मरियम बदनाम हो, वो नहीं चाहता था कि मरियम के बारे में कोई दूसरा कुछ बात दे। उसने कहा मैं चुपचाप से इसको अलग कर दूंगा, मैं भी बच जाऊंगा, वो भी बच जाएगी, संसार के लोग जानेंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे प्रियो नहीं। लेकिन धर्मी होने का मतलब क्या है, जब इस स्थल को हम देखते हैं तो तीन मुख्य बातें हैं जो धर्मी होने की। वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार था, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार था, वो परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए तैयार था। ये सच्ची धर्मिता है। अगर मैं और आप इस बात को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको धर्मी बनाया, ये सच है, हम सब पाप के कारण धर्मी नहीं थे, अधर्मिता में जीवन था, पाप के कारण नाश हो रहे थे, पाप हमारा उठना चलना और फैलना था, और परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, और पाप की मजदूर तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो उसने अपने लहू को क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहाया, जिसने उस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के पापों को क्षमा किया और उसको धर्मी बनाया। वो कहता हम विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए, पौलुस रोमियों के 5 अध्याय में कहता है विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनाए गए, मेरे और आपको परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया। लेकिन यहां पर जब हम इस बात को कहते हैं यदि मैं और आप धर्मी बनाए गए तो तीन बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के वचन को सुनना, कितना अधिक हमारे जीवन में परमेश्वर के इस वचन को सुनने की अभिलाषा और लालसा रहती है। हम बहुत व्यस्त हैं, जब कलीसिया में बाइबल अध्ययन का समय होता है हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, जब इतवार का दिन हो, अभी पिछले दिनों में दो भाइयों से बात कर रहा था और मैंने उनसे प्रोत्साहित किया कि आप अच्छा हो कि इतवार को आए हैं। हमें परमेश्वर के वचन के लिए लालसा होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए भूख होनी चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान यह है कि वो वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए तैयार रहता है, ना केवल लेकिन सुनने के बाद वो विश्वास करना, कितना अधिक वचन पर विश्वास करते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं, परीक्षाओं में हम जब रहते हैं, संघर्ष में हम जब रहते हैं, बीमारियों में जब रहते हैं, कितना अधिक हम विश्वास करते हैं, आसान नहीं है। चाहे आप हो चाहे मैं हो, मेरे ऊपर भी संघर्ष आता है, मुझे कई बार कटाई होती है और सब परमेश्वर से मैं अनुग्रह मांगना पड़ता है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह के साथ शिष्य रहते थे और शिष्य बार बार प्रभु से कहते थे हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। मुझे और आपको भी आज ये परमेश्वर से मांगना है, प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जब हमारे परिवार में कोई समस्या आती है, कोई चीज होती है, कोई काम हमें करना है, कैसे होगा, हम कितने विचलित होते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, जिसने एक दिन अब्राहम से कहा यहोवा यिरे, परमेश्वर उपाय करेगा, क्या वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर आज भी परमेश्वर है कि बस हमेशा तैयार हूं कि हाँ परमेश्वर आप उपाय करेंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं परेशान करती हैं, लेकिन घूम फिर के हम परमेश्वर के वचन पे आते हैं, प्रभु आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। मेरे प्रियो, विश्वास ना केवल सुनना लेकिन विश्वास पालन करना, कितना अधिक हम पालन करने के तैयार है, कितना दिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर दिया, परमेश्वर के नियमों को पालन कर दिया, परमेश्वर के वचनों को पालन कर दिया,
कितना अधिक मांगते हैं, हम इस बात को मांगते हैं परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए और मुझे मदद कीजिए ताकि मैं हर कदम पर आपके वचन का पालन कर तैयार हूं। मैं बार बार उस उदाहरण को देता हूं जो मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना है, और मार्टिन लूथर के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट उसको आरंभ किया था जिसके आज हम आगे। और जब एक दिन रात में बैठे हुए अपनी टेबल पर बैठे हुए थे, कैंडल जला करके बाइबल को पढ़ रहे थे, और पढ़ते 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 सो गए, बाइबल खुली थी, हाथ उनका था। थोड़ी देर बाद उनके पास उनका मित्र आया और बोर होने लगी थी। मित्र ने कहा, अरे ये लूथर तो बैठकर इस तरह सो रहा है, और जो उसको उठाया हिलाया, लूथर लूथर क्या कर रहा है? वो बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा, मैं वचन को पलट पलट के ये देख रहा था कौन सी आज्ञा है जो आज तक मैंने प्रभु की पालन नहीं करी, कौन सी आज्ञा है जो मैंने प्रभु की आज तक पालन नहीं करी। क्या ये हमारे अंदर इच्छा थी? क्या हमारे अंदर इच्छा थी? सच में हमें सोचना है, हमें विचारना है। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ धर्मी था, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से धर्मी बनाया है। अगर धर्मी बनाया है तो गुण मेरे और आपके अंदर आने हैं और बढ़ने हैं। उसके लिए मुझे प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है, उसके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, उसके लिए मुझे मेरा और आपके जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, तब ये चीज हमारे जीवन में आती है। संघर्ष करना है आसान नहीं, मसीह कठिन। अगर आप सोचते हैं कि मसीह जीवन सरल है तो आप गलती में है। कल आपके पास अच्छा मसीह जीवन नहीं, मसीह सरल जीवन नहीं, मसीह जीवन प्रतिदिन का संघर्ष होकर आगे जाना है। यह तब आगे चलकर को कहता है उसको चुपचाप से बदनाम करने के लिए हटाना चाहता था। अब ये यूसुफ के विचार थे, लेकिन क्या हुआ आगे चल करके? स्वर्गदूत का संदेश हम देखते हैं, स्वर्गदूत का संदेश हम देखते हैं 20 पद से। पर जब वो ये सब सोच रहा था, क्या सोच रहा है, उसके विचार क्या हो रहे हैं, उसके विचारों ने उसको केवल अपने में घेर रखा है, वो अभी परमेश्वर की योजना को नहीं जानता, वो परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, वो केवल ये सोच रहा है कि मेरी मंगनी इससे हुई है। शायद वो सारी बातों का भी नहीं जानता, उसके सामने एक कोई चीज स्पष्ट नहीं है, केवल ये है कि मुझे इस कन्या से मेरी मंगनी हुई है और इससे मेरा विवाह होना है। लेकिन वो और कुछ नहीं जानता कि इसके पीछे परमेश्वर की कौन सी योजना चल रही है, सार्वभौमिक परमेश्वर किस योजना को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर, और उसकी योजना उसकी युक्ति अद्भुत है, जिसको हम परमेश्वर के वचन में आगे भी देखते हैं। क्या सोच रहा था? एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में ये कहता दिखाई दिया। अगर हम पूरे इस दूसरे अध्याय को देखेंगे तो 4 बार हम स्वर्गदूतों का देखते हैं जो स्वर्गदूत संदेश लाते हैं, लेकिन यहां पहली बार है। स्वर्गदूत एक स्वप्न क्या कह रहा है? हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, क्योंकि वो दाऊद के संतान में उसी वंशज में चला आ रहा है। मरियम भी उसी वंशज में थी, वो भी उसी वंशज में था, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि दाऊद से एक वंश से एक उत्पन्न होगा, और इसलिए यहां पर वो स्वर्गदूत इस बात की साक्षी देता है, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तो मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, मत डर, तू भयभीत मत हो, तू विचार जो विचार करा उसे तू विचलित मत हो, परेशान मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, तू इससे लज्जित मत हो। परमेश्वर ऐसे समय में जब उसको त्याग करना चाह रहा है, क्योंकि सोच में, विचार में, मस्तिष्क में, सारी चीज में सब नकारात्मक है, उसको व्यवस्था का दंड दिखाई दे रहा है, लोगों की बदनामी दिखाई दे रही है, सब कुछ उसको हटाना चाहता है, करा नहीं, नहीं, नहीं। कितना प्यारा संदेश है। इससे पहले कि उसको आगे संदेश दे, उससे पहले उसको कह रहा है कि तू उसको अपनी पत्नी बनाने से मत डर। एकदम से यूसुफ ने सोचा, क्यों मुझे क्यों नहीं डरना है, क्या बात है, क्या इसमें भेद है, कौन सा भेद इसमें छुपा हुआ? तब वो कहता है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये अद्भुत है, यीशु मसीह का जन्म एक यूनिक जन्म था, एक विशिष्ट जन्म था। बिना पुरुष के एक स्त्री संतान अपने घर में लेके, बालक को घर में लेके आगे बढ़ रही है। और कैसे हुआ? ये परमेश्वर के आत्मा का अद्भुत काम है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी उत्पत्ति में, उसके दूसरे अध्याय में, तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम हवा को जब बनाया था, तो आदम को बनाया था तो लिखा है उसने अपनी उसमें अपने श्वास को फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर की श्वास में, परमेश्वर की आत्मा में वो सामर्थ है, वो निर्जीव से जीवन प्रदान करता है। हमारे मुस्लिम भाई थोड़ा सा बहुत दूर होके बात करते हैं, वो कभी कभी कहते हैं, उनके यहाँ विचार है, अरे यीशु मसीह तो जब छोटे थे, शायद 2-3 साल के थे, तो मट्टी से चिड़िया बनाया करते थे, उसको फूंकते तोड़ने लगती थी, बाइबल ऐसा वर्णन नहीं करती। लेकिन परमेश्वर में सामर्थ, परमेश्वर सब कुछ करता है, वो अलौकिक परमेश्वर है। ये अलौकिक घटना है, अद्भुत घटना है। कई बार मनुष्य के समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, जब आप ये देख सकते हैं चांद और सूरज अब बीच में लटके पड़े हैं, किसने लटकाया? क्या मनुष्य ने लटकाया उसको? क्या ताराओं को मनुष्य ने लटकाया है? क्या आकाश को मनुष्य ने लटकाया है? क्या विज्ञान ने लटकाया है? क्या किसी ऐसी चीज, कौन ने, किसने करा है? वो अद्भुत परमेश्वर जो संसार की सृष्टि ऐसी अद्भुत रीति कर सकता है, जिसको कोई साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती, सोच नहीं सकती, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे कुछ है, जल थल किसने दिया? क्या मनुष्य ने दिया? किस मनुष्य ने जल और थल को बनाया है? कौन कर सकता है? जब परमेश्वर संसार की सारी रचना करता है, सृष्टि करता है, मनुष्य बनाता है, तो वो क्यों नहीं किसी के, किसी भी स्त्री को लेकर, किसी को जीवन लेकर अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, यूसुफ धर्मी था, उसने वचन से सुना, उसने विश्वास किया। और मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जब तक मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास उत्पन्न हो, हम इधर उधर भटकते रहेंगे। मैं फिर से कह चारों तरफ जो देख, जब हम इन सारी चीजों को लेकर विश्वास कर सकते हैं, सारी चीजों पर, तो हम इन सारी वो अलौकिक घटनाओं पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते? और ये सच है। और मसीह जीवन यही से आरंभ है। मसीह जीवन आरंभ का यही है कि यीशु मसीह संसार में कुंवारी मरियम के गर्भ से मनुष्य बनकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो पुरुष रहित, ताकि पुरुष का समागम उसके ना हो, पुरुष का, पुरुष को छुए ना, क्योंकि अगर पुरुष उसको छूता तो वो फिर वो भी पाप का एक भागी बनता। इसीलिए संसार में सारी सृष्टि के अलावा केवल एक सृष्टि है जो यीशु मसीह की है, वो पाप रहित है, पाप रहित। बाइबल कहती है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने पाप, केवल यीशु, मेरे इस बात को तो याद है। तो क्या कह रहा है? घर में पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन पे ये कार्य किया है उसके ओर से, मेरे प्यो, ये उसका संदेश था। तब आगे चल के कहते हैं, देखते हैं कि 21 पद, वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। अब ये सब ये इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वो पूरा हो। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह संसार में हुए, जब नबियों का वचन पूरा हुआ तो ये सब काम हुआ। लगभग पुराने नियम में 300 ऐसी भविष्यवाणी हैं, 300 ऐसे वचन के स्थल है पुराने नियम में, 39 पुस्तकों में, जिनमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ओर संकेत दिया गया है। कुछ स्पष्ट है, डायरेक्ट है भविष्यवाणी, कुछ संकेतिक रूप में दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से संसार में आएंगे, अलग अलग रीति से, अलग अलग नामों के द्वारा। अभी हम बुधवार को हम देख रहे थे भाई, जब शाम को पहले बुधवार को, तो मैंने कहा था यीशु मसीह का उदास के बारे में, यशायाह दास के बारे में कहता हूँ यीशु मसीह की हो सकते हैं। 300 ऐसे स्थान है मेरे प्रियो। वो क्या कह रहा है? वो पुत्र जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। अरे यशायाह 59 में कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से अपने आप को अलग कर दिया पापों के कारण, और तब आगे वर्णन कहता है कि कोई सच्चाई नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, कोई उद्धार नहीं है। यशायाह 59 में कोई उद्धार नहीं है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने अपनी योजना में होकर एक उद्धारकर्ता को भेज दिया है। उद्धार का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है? अरे मेरी बेटी की शादी होगी, बहुत बड़ा उद्धार हो गया। कर्जा चुका दिया, बहुत बड़ा उद्धार हो गया। अरे उपहार था, चंगाई मिल गई, बहुत बड़ा उद्धार। ये नहीं है। किसी बोझ को हल्का हो जाना, किसी समस्या का समाधान हो जाना, किसी और आस्था की पूर्ति हो जाना, केवल ये चीजें उद्धार नहीं है। उद्धार नहीं है ये, जरूर ये सारी चीजें हमें परेशान करती है, इसमें जब पूरी होती है तो हमें आराम मिलता है, सच है, लेकिन ये उद्धार नहीं। उद्धार एक संबंध है, वो संबंध जो परमेश्वर के साथ, जो पाप के कारण अधन की बाटिका में टूट गया था, वो संबंध, पुनः उस संबंध में जुड़ जाना, ये उद्धार है, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब और स्पष्टीकरण, हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से विलय हो जाना, मिल जाना। वो आत्मा जो पाप के कारण दूर हो चुकी, जिसके कारण मनुष्य प्रयास कर रहा है, धर्म के कर्म कर रहा है, ये कर लो तो ये कर लो तो ये कर लो वो कर लो, उपवास कर लो, यहां चला जाओ, तीर्थ में चला जाओ, सब कुछ इधर से करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का विलय नहीं हो रहा। एक जीवनी नहीं, दूसरी जीवनी, दूसरी जीवनी, तीसरी जीवनी, कब होगा? लेकिन बाइबल के अनुसार मनुष्य के पास एक जीवन है, मनुष्य का। और दूसरे लोग भी इस बात कहते हैं कि मानव जीवनी सबसे बड़ी जीवनी है, अगर उसमें मनुष्य का उद्धार नहीं तो और दूसरी जीवनी में उद्धार नहीं। इसलिए समझना है, उद्धार पापों से छुटकारा, पापों से क्षमा, परमेश्वर के साथ मिल जाना, परमेश्वर के साथ मेल हो जाना, पाप की दीवार हट जाना, यह वो कह रहा उसका उद्देश्य। धर्म स्थापित नहीं करेगा, अपनी जाति के लोगों को नहीं बढ़ाएगा, कुछ और नहीं करेगा, लेकिन लोगों का उद्धार करेगा, जगत का उद्धार करेगा। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना, परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, चाहे भारत का हो, चाहे विदेश का हो, छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गोरा हो, काला हो, जो कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना, परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना, वो उद्धार करेगा। तब आगे जब कहता 22 पद में, अब ये इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था पूरा, कौन सा नाम, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी जन्म गर्भवती की, देखो नबी की बातें, यशायाह उसके 7 अध्याय उसके 14 पद में, यशायाह 7 अध्याय में 14 पद में ये यशायाह कोट करता बोलता है, उसी को यहां पर कोट किया गया है। नीचे बाइबल में फुटनोट में लिखा भी है, ये शायद 7 अध्याय उसके 14 पद, किसे, वो गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु। मेरे पे कितने 100 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर की योजना अद्भुत है, परमेश्वर के कार्य अद्भुत है, ये वो कर रहा है मेरे प्रियो। तीसरी बात, यूसुफ का प्रतितर 24 और क्या नाम से 25 पद में, तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक ना गया जब तक पुत्र ना जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ ने क्या करा, यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसे सब बातों को जो उसके मस्तिष्क में घूम रही थी, जो उसको परेशान कर रही थी, हताश कर रही थी, निराश कर रही थी, चिंतित कर रही थी, अब क्या होगा, जो उसको बार बार लज्जा दिखाई दे रही, वो सब से करके परमेश्वर ने उसने वचन के अनुसार किया और तब उसने आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसके साथ आया। ये यीशु की धर्मिता का देखते हैं, जो वचन सुनता है, जो विश्वास करता है और जो पालन करता है, वो धर्मी कहलाता है, वो धर्मी कहलाता है। केवल एक दिन हमने उद्धार करता प्रभु को स्वीकार कर लिया, उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए, हाँ विश्वास बन गए, हमारा नहीं जन्म। प्रतिदिन के जीवन में क्या, प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन हम उसके सुन में विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हम उसकी आज्ञा पालन करने तैयार हो रहे हैं, ये हमारा जीवन, ये हमारा। तब 4 नाम उसके यहां पर आए, मसीह यीशु उद्धारकर्ता, मैंने उद्धारकर्ता के बारे में मैं समझा चुका हूं। मसीह जो शब्द है वो सचमुच में एक अभिषिक्त, इब्रानी जो शब्द है इब्रानी शब्द का ये अनॉइंटेड वन अभिषिक्त, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया। जब पहले समय में याजक को परमेश्वर बनाया तो उनको अनॉइंट किया जाता था, नबी बनते थे उनको अनॉइंट किया जाता, अभिषेक किया जाता था, राजा होते थे तो उनको अभिषेक किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आरंभ से एक विशेष कार्य के लिए अभिषेक किया। और वो विशेष कार्य अभिषेक क्यों किया? कि वो अभिषेक, जिस अभिषेक में होकर वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे, मसा हो जाए, मसा हो जाए, ये उसके नाम करते हैं, ये उसके नाम करते हैं, जिसको इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंट किया, इसलिए अभिषेक किया, ताकि वो मेरे और आपके लिए स्वयं को अपने आप को बलिदान कर दे। ये परमेश्वर की योजना थी और मेरे और आपके लिए कीमत चुका दी। यीशु पुराने नियम का यहोशू है, पुराने नियम का यहोशू है और इब्रानी शब्द है, इब्रानी शब्द है। नए नियम में यूनानी भाषा में यीशु शब्द है जिसका अर्थ है बचाने वाला, सेवियर, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला। यीशु मेरा आपका सेवियर है, उद्धार करता है, बचाने वाला। मेरे प्रियो, उद्धार करता के बारे में हम देख चुके हैं और इसलिए पौलुस कहता है प्रेरितों काम उसके 4:12 में, इस पृथ्वी के पर स्वर के नीचे और कोई दाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसीलिए योना पहला योना सुसमाचार में कहता है उसके 14:6 में कि मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंचता, ये उद्धार करता है। और अंतिम बात इमैनुएल, इमैनुएल परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। अदन की वाटी में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ रहना आरंभ किया और मैंने पिछले दिन में बताया था कि उसके आरंभ से अभिलाषा थी कि वो मनुष्य के साथ रहे। इसीलिए सारे कुछ मंदिर बनाए गए, सब कुछ बनाए गए, वो मंदिर पूरे नहीं हो पाए। मेरे और आपके मंदिर बनाए जाने से पहले, इस कलीसिया के मन के लिए मंदिर बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे, पहले वाचक का संदूक था, फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया, सुलेमान मंदिर के बाद फिर उसके बाद जरुब्बाबेल ने बनाया, फिर वो भी फिलहदेश ने बनाया, और ये सारे धीरे 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 70 AD में सारे मंदिर एक ही बात एक नाश होते रहे। तब उसके बाद में परमेश्वर ने मेरे और आपको मंदिर बनाया, मैं तुम में वास करूंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम में होऊंगा, मेरे प्रियो, मैं और आप। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग, जीवन के इमैनुएल, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग। परमेश्वर का धन्यवाद, वो इमैनुएल जो बालक बनकर इस चरणी में आ गया, जो परमेश्वर पिता की आरंभ से उस योजना में और किस रीति से उस योजना में होकर वो योजना को परमेश्वर पूरा कर। तो परमेश्वर यूसुफ को किस प्रकार से, मैंने आपसे कहा लूका में आप जब जाएंगे तो वहां यूसुफ के बारे में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां मरियम के बारे में मिलेगा, लेकिन छोटा सा स्थल है यूसुफ के बारे में, उसके बाद में हम नहीं आते। हाँ, केवल बाइबल के इतिहास पर, इतिहास इस बात को बताता है बाइबल इतिहास कि उसके बाद कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम की विविधित विवाह हुआ और विवाह होने के बाद भी वो साथ रहते थे, तब उसके बाद और भी उनसे संतानें उत्पन्न हुई जिसको यहाँ क्या नाम से यीशु के स्टेप ब्रदर कहा गया है, उनमें से एक याकूब है जिसको आप देखते हैं जो आगे चल के याकूब की पत्री जिसने लिखी है ना, उन बात को देखते हैं। तो हमें इस बार को समझना है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए, किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को संदेश पहुंचाया है। मेरे प्रियो, जब किस्मत की भीड़ में है, कितना अच्छा हो हमारे कान खोले जाए। भजन संहिता 119 समता 147 पद है, कथा भोर को वो मैं उठ करके उसकी आवाज को सुनता हूँ। बहुत ही सुंदर वो दाऊद कहता है, भोर होने से पहले ही उठकर मैं सहायता के लिए तुझे पुकारता हूँ, मैं तेरे वचनों की आस लगाए भोर को उठने से पहले। Psalm 119:147। हम बार बार जवानों को इनकरेज करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि भैया परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लीजिए। व्यस्त कितना है, परमेश्वर के वचन को लीजिए, डिवोशन करिए, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सीखिए, सुनिए आवाज, सीखिए, आज्ञाओं को समझिए, पालन करिए, वही आपके जीवन में। व्यस्तता है, कार है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अगर प्रभु कह दे ना भैया व्यस्त हो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्या होगा? मेरे प्रियो सीख लीजिए। अंत में जो लागू करना है मेरे प्रियो, प्रश्न यह है, क्या मेरे और आपके अंदर यह अभिलाषा है कि मैं परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहता हूं? क्या आज हम कहेंगे प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए, मुझे अनुशासित जीवन दीजिए ताकि मैं आपके वचन को एक नियमित रीति से सुनने के लिए तैयार, मेरे कान खोल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वसंत 50:4 में, भोर को मुझे उठाता है ताकि मैं शिष्य के समान उसके सुन। भजन 50:4 भोर को उठाता है, मेरे और आपके साथ है। क्या हम परमेश्वर के वचन पर हर परिस्थिति में विश्वास करने तैयार? कठिन होता है, अगर विश्वास न बनाए प्रार्थना कर प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे विश्वास। क्या हम परमेश्वर के वचन के पालन करने तैयार है? और तब उसकी उद्घोषणा, उसके सुसमाचार को दूसरी तरफ पहुंचाने तैयार है कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, यीशु मसीह। इस बड़े दिन में आप बहुत सारी चीज प्लान कर रहे होंगे, योजना बनाना, अच्छी बात है, बुरा नहीं, उत्सव मनाना, मित्रों को बुलाना, केक बनाना, भुजिया बनाना, अखबार बनाना, आनंद करना, आनंद को बांटना, बुरा नहीं। हाँ, कर्जा लेकर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, जो कुछ है उसके अनुसार। लेकिन अगर काम करते हैं, आपके मित्र आते हैं, अच्छा उनको बुलाइए, लेकिन काश एक संदेश दे दे ताकि वो उस वचन पर चल सके। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम यीशु के जन्म के रहस्य को समझ सके। और यूसुफ का स्वभाव, यूसुफ का जीवन, यूसुफ के गुण मेरे और आपके जीवन में आ सके। आइए।